ओम शांति। तो अभी का ये सत्र मुरली रिवीजन का है। तो हमारा मुरली रिवीजन करने का उद्देश्य ये नहीं है कि मुरली की पॉइंट रिवाइज कर लें, इतना ही नहीं कि केवल रिवाइज करके चले जाएं। हमारे मुरली रिवीजन करने का ये उद्देश्य होता है कि जो बाबा ने कहा है वो हमें करना है, ठीक है ना। हम कोई आज मुरली रिवीजन, वैसे हम रोज रात में 8:30 से 9 हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें मुरली रिवीजन करते हैं, और उसमें हम हर एक से यही कहते हैं कि केवल मुरली की पॉइंट रिपीट करके चले जाना वो नहीं हम चाहते। हम चाहते हैं कि वो रहे कि जो ये बताए कि आज की मुरली से हमने प्रैक्टिकल में किया क्या। तो मुरली सुनने का मतलब तो यही होता है ना, हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में करें, ठीक है ना। अच्छा, तो मुरली हम रिवाइज करेंगे, साथ साथ मुरली के पॉइंट के ऊपर कुछ चिंतन भी करेंगे। तो आज की मुरली आप सभी को याद होगी, क्या कहा बाबा ने आज, योग बल से क्या करते हो, पुरानी दुनिया को नया बनाते हो। अब इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि योग बल कितना बड़ा बल है, योग का बल कितना बड़ा बल है कि ये पुरानी दुनिया नई दुनिया बन जाती है, नरक स्वर्ग बन जाता है, रावण राज्य खत्म होकर राम राज्य परिवर्तन हो जाता है। अब कई बार कहते हैं हमारा योग नहीं लगता, क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू हमारे बुद्धि में नहीं रहती। कितना कितना इसका महत्व है, कितनी बड़ी प्राप्तियां है, वो हमारी बुद्धि में नहीं रहती। जैसे आज बाबा ने एक वैल्यू बताया, एक इसका महत्व बताया कि पुरानी दुनिया नई दुनिया में परिवर्तन हो जाती है। अगर आपसे कोई पूछे आप ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाते हैं, रोज योग करते हैं, आपको क्या मिलता है, तो आप उसको कुछ नशे की बात ऐसी सुनाओ कि अच्छा इतनी बड़ी प्राप्ति। तो अभी 2 मिनट समय है, आप चिंतन करेंगे, 2 मिनट का समय दे रहा हूं, आप चिंतन करेंगे कि आप जो योग करते हैं इस योग से आपको क्या मिलता है, क्या प्राप्तियां हैं, इसका क्या महत्व है। इसीलिए मैंने कहा आगे आकर के बैठेंगे तो आप अपना शेयर कर सकेंगे। योग जो कोई आपसे पूछे आप रोज योग में जाते हो क्या क्या मिलता है, तो आप उसको क्या जवाब देंगे, अब ये आप चिंतन करेंगे, ठीक है ना। 2 मिनट समय आप साइलेंस में बैठेंगे और चिंतन करेंगे कि मैं जो रोज योग करता हूं इससे प्राप्तियां क्या है, कितनी बड़ी वैल्यू, क्यों बाबा रोज रोज कहते बच्चे मुझे याद करो, मुझे याद करो। तो सोचो योग से क्या क्या प्राप्तियां हैं, योग की क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, आप अंदर में पॉइंट निकालो। बहुत सुंदर बात इन्होंने बताया। देखो आप उसको नशे से कि योग को अग्नि कहते हैं, और ये अग्नि ऐसी अग्नि है जिससे हमारे 63 जन्मों के पाप जल के भस्म हो जाते हैं। इतनी बड़ी प्राप्ति, विकर्म विनाश हो जाना, और एक जन्म के नहीं, 2 जन्म के नहीं, लेकिन 63 जन्मों के पाप खत्म होते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर। अच्छा, और बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छी पॉइंट निकाला, और औरों को बताने दीजिए। निरंतर नहीं, योग से मिलता क्या है आपको वो बताइए। योग से खुशी मिलती है, हल्कापन, सुख शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। हाँ बोलिए। मन की एकाग्रता, बोलिए। हाँ ऐसे पॉइंट, देखो पतित पतित आत्मा पावन बन जाती है और किसी भी चीज से नहीं हो सकता। पावन, पवित्र, संपूर्ण पवित्र वो योग से ही होती है, है ना। विश्व बहुत सुंदर, हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, मनुष्य से देवता बन जाते हैं। नशे से बोलो वो आपका मुंह देखता रहेगा, अच्छा इतनी बड़ी प्राप्ति। आप बोलो हम देवता बनते हैं इससे। जो हम योग लगाने जाते हैं ना, तो हमारे अंदर सारे दैवी गुण आ जाते हैं, हम स्वराज्य अधिकारी बन जाते हैं, अपने आप के राजा बन जाते हैं और भविष्य में विश्व के राजा। विकारी से निर्विकारी बन जाते हैं। पुराने स्वभाव संस्कार, जिस स्वभाव संस्कार में आज सारी दुनिया, पांच विकारों की कड़ी जंजीरों से हम मुक्त हो जाते हैं, है ना। कर्म इंद्रियों के मालिक आज लोग यही कहते, सारी दुनिया में किसी से भी पूछो, कहते मुझे सब पता है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन हमसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि आत्मा आज शक्तिहीन है, अपने अंदर ताकत नहीं है कि खुद को हम कंट्रोल कर सकें। तो हमारे अंदर वो ताकत आ जाती है जो हम माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत बन जाते हैं, धर्मराज की सजाओं से मुक्त हो जाती। कितनी सुंदर सुंदर बातें निकाला। जब इतनी प्राप्तियां बुद्धि में रहेगी तो क्या योग में नींद आएगी? हा? तो अगर योग नहीं लग रहा छोड़ दो योग करना, आप उस समय प्राप्ति याद करो, ठीक है ना। जब योग नहीं लग रहा है तो आप ये सोचो जो मैं योग लगाने जा रहा हूं इससे प्राप्तियां कितनी है, अपनी बुद्धि में लाओ। बेहद का सुख मिलता है, अतिंद्रिय सुख। संकल्पों में हमारे संकल्प पॉजिटिव हो जाते हैं। आज सारा जीवन में सारी समस्याओं का कारण है निगेटिव संकल्प, और हमारे संकल्प बहुत महान श्रेष्ठ। हाँ, और सबसे बड़ी बात, जिस भान में आज सारी दुनिया जकड़ी हुई है, है ना, शारीरिक भान, देह भान, तो हमारी देही अवमानी अवस्था आत्म अवमानी बन जाती। कितनी सारी बातें हैं। तो जब भी आप योग करते हैं, मैं समझ गया आप बहुत सुंदर सुंदर, सबके पास बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट्स हैं, सबने बहुत अच्छे अच्छे निकाले। लेकिन अब करना क्या है कि जब भी योग करते हैं तो मैं आपको ये सलाह दूंगा, आप कोई ना कोई लक्ष्य लें, कोई ना कोई संकल्प लें। बिना लक्ष्य लेकर के, बिना संकल्प लेकर के योग में बैठना ही नहीं। आप हमें योग में नहीं बैठना है, बस जब तक आपको आधा घंटा बैठना है, एक घंटा बैठना है, आप अपने आप से पूछो मुझे करना क्या है इसमें, इस आधे घंटे में मुझे क्या करना है। बाबा ने इतने सुंदर सुंदर अभ्यास बताए हैं, क्या हमारा ऐसे संगम युग बीत जाएगा? मैं आज नहीं करूंगा तो कब करूंगा, अपने आप से पूछो। अगर आज नहीं करूंगा, ये अभ्यास किसके लिए बताए हैं? कोई दुनिया वालों के लिए बताए हैं क्या? कोई और आएगा करने के लिए? तो पहले अगर हमारा योग, हमारा संकल्प पावरफुल होता है तो योग ऑटोमेटिक पावरफुल हो जाता है। संकल्प ढीला, कोई हमने संकल्प लेकर के नहीं बैठा, ऐसे ही योग में आकर के बैठ गए तो आपका घंटों ऐसे ही पास हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं हम योग का सुख लें, योग में हमारी संपूर्ण एकाग्रता हो, तो इसके लिए पहले आप कोई ना कोई संकल्प लो, लक्ष्य लो, फिर उसके बाद योग में बैठो, ठीक है। और योग, बाबा ने कहा योग बल, लेकिन हमारा बल शक्ति जमा हो, बल जमा हो। हम योग करते हैं, मुरली सुना, हमारे अंदर शक्ति जमा हुई, योग किया हमने, हमारे अंदर शक्ति जमा हुई, सेवा किया, हमारे अंदर शक्ति जमा हुई। शक्ति तो हम सब जमा करते हैं, लेकिन लीकेज के ऊपर अटेंशन नहीं रहता, है ना। अमृत बेला इतना उठ करके शक्ति जमा की, मुरली सुन करके शक्ति जमा की, सेवा करके शक्ति जमा की, और किसी को एक कड़वा शब्द बोल दिया, खत्म शक्ति। हाँ, तो ये अटेंशन रखना है, किसी को दुख दे दिया, खत्म शक्ति, जो जमा किया था खत्म, और किसी के ऊपर गुस्सा कर दिया तो लीकेज नहीं, वो होल बन जाता, फिर महीनों का इकट्ठा निकल जाता है। आप सोचो, महीना भर हमने इतना किया, जमा करने में इतनी मेहनत किया, और खत्म होने में सेकंड। तो जितना जमा करने पर ध्यान हो, उतना लीकेज ना हो उस पर भी ध्यान हो, नहीं तो एक तरफ जमा कर रहे हो, दूसरे तरफ वो खत्म होता जाए तो फिर फायदे क्या। तो ठीक है ना, इसके ऊपर भी चिंतन करना कि जमा किस आधार से होता है बल। हाँ, योग का, और हमारे अंदर जमा होगा योग का बल तो हमारे जीवन से क्या दिखाई पड़ेगा। हाँ, वो दिव्यता, अलौकिकता, वो रूहानियत हमारे जीवन से दिखाई पड़ेगा। हमारे पुराने स्वभाव संस्कार परिवर्तन होते नजर आएंगे, दैवी गुण नजर आएंगे, परमात्म शक्तियां नजर आएगी। तो योग बल जम, उसके लिए मन बुद्धि की एकाग्रता है ना, और मन बुद्धि एकाग्र रहे उसके लिए चाहिए मन बुद्धि की स्वच्छता, मन बुद्धि की पवित्रता। अगर एक भी आत्मा के प्रति निगेटिव भाव है, अशुभ भावना है, नफरत की भावना है, घृणा की भावना है, तो हमारा योग लग नहीं सकता। हम बैठेंगे योग में, वही व्यक्ति सामने आ जाएगा, उसी का चित्र आ जाएगा सामने। वो कहेगा कि मुझसे आप नफरत कर रहे हो, मनमुटाव कर रहे हो, चले हो योग लगाने, पहले मेरे से तो हिसाब किताब निपट लो। हाँ, लगेगा योग। इसलिए कहते हैं ना, योगी आत्मा ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, सबसे उसकी क्या रहेगा, समान दृष्टि, सबसे एक समान, एक रस। और एकाग्रता लाने के लिए बाबा ने बताया है, आप ना यहां से एक सौगात लेकर के जाइए, मैं खुद करता हूं और उसका सुख हमें मिलता है, रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ करके उसका भाव अपने शब्दों में लिखो। देखो, आपको ज्ञान सुनाने की इच्छा करेगी, आपको योग में व्यर्थ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बाबा ने सारा हमें सुना दिया है। योग करने की इच्छा, रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ने की आदत डालें। तो बाबा ने कई अव्यक्त मुरली में कहा कि जो बच्चे सारे दिन में कम से कम 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, तो बाबा के महावाक्य हैं, उनके योग में व्यर्थ संकल्प खत्म हो जाएंगे और उनके पुराने स्वभाव संस्कार चेंज हो जाएंगे। लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ ये 5 स्वरूपों का अभ्यास सारे दिन में। और बाबा, आप इसकी वैल्यू आप समझ लो। एक बार तो बाबा ने कहा ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करो, लास्ट टर्म में था, सीजन के लास्ट टर्म में, बाबा इससे क्या फायदा है बाबा अगले सीजन में बताएगा, पहले करो। कई बार होता है ना, कई कोई चीज हम खरीदते हैं तो बेचने वाला कहता है पहले यूज करो फिर आप बताना इसका कितना फायदा होता है। तो बाबा ने कहा पहले बच्चे करो। बाबा ने सारी बातें बता दी है, हम करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। और बाबा ने कहा अगर सारे दिन में, कई बार हम कहते हैं सारा दिन याद ही नहीं रहा, रात में सोने गए तो याद आया कि 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास करना था, तो आप समय निश्चित कर लो आज किस समय करना है, है ना। तो सारे दिन में, और बाबा ने कहा अगर सारा दिन आप भूल जाते हो किसी कारणवश, तो रात में सोने के पहले 8 बार रिवाइज करके 45-40 मिनट उसको करके फिर सोना है। इतना इंपॉर्टेंट बाबा ने दिया। तो अब हाँ ये यहां से सौगात लेके जाना, अगर आप किसी कारण, ये बाबा की आज्ञा है, आप रोज नियम बनाना सारे दिन में 8 बार 5 स्वरूपों का, अमृत वेले उठते ही, योग के पहले बाद में, मुरली क्लास के पहले बाद में, रेस्ट के समय, भोजन के समय, शाम के योग के पहले बाद में, रात में सोने, आप बनाएंगे आप ना दिनचर्या में, तो आपका 8 बार से भी ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमें खुद को बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम 5 स्वरूपों का अभ्यास 2 मिनट में कर लेते हैं, ठीक है। बोले या अपने आप ही आप करेंगे? अच्छा, तो हमें 2 मिनट ही करना है, तो हम केवल एक संकल्प देंगे बस। स्वयं को देखेंगे परम धाम में, अनादि स्वरूप में, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की तेजस्वी किरणों के नीचे। फिर देखेंगे आदि स्वरूप, मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, स्वर्ग में, देव स्वरूप में, स्पष्ट रूप से अपने आप को देखेंगे, मैं स्वर्ग में, तीसरा पूज्य स्वरूप, स्वयं को देखेंगे मंदिर में, मैं इष्ट देव या देवी, हजारों लाखों भक्त आत्माएं मेरे सम्मुख, मेरी दृष्टि से, मेरे मस्तक से प्योर वाइब्रेशंस सभी भक्त आत्माओं के ऊपर पड़ रहा है। मैं ब्राह्मण स्वरूप, स्वयं भगवान मेरा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो जाएंगे, वह मेरा भाग्य, भाग्य विधाता भगवान सर्व संबंधों का प्यार दे रहे हैं। इस अंतिम जन्म में भगवान का हाथ और साथ, फरिश्ता स्वरूप, अपने आप को देखेंगे, मैं आत्मा लाइट के शरीर में, अपने आप को स्पष्ट रूप से देख रही हूं, मेरे सिर के ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा, मैं फरिश्ता ग्लोब पर, ओम शांति, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप 5 स्वरूपों का अभ्यास सारे दिन में बार बार करते रहेंगे। अनादि स्वरूप परम धाम में देखना, आदि स्वरूप स्वर्ग में देखना, पूज्य स्वरूप अपने आप को मंदिर में देखना, ब्राह्मण स्वरूप संगम युग पर देखना, और फरिश्ता स्वरूप अपने आप को ग्लोब पर देखना। बाबा के बड़े सुंदर महावाक्य हैं कि जब तुम अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा परम धाम की स्थिति में स्थित होकर थोड़ा भी समय सकाश देने की सेवा करेंगे तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा होगी। अच्छा, प्रश्न में बाबा ने क्या बोला? ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? क्या कहा बाबा ने? कोई भी भूल करके छिपाएंगे नहीं। हाँ, अभी आते हैं। अगर भूल हो जाती है तो क्या करेंगे? बाबा को सच सच सुना देंगे। तो सच सुनाने से क्या फायदा होगा? क्यों बाबा कहता है कोई भूल हो जाओ, भूल हो जाए तो बाबा को सुना दो? बाबा तो अच्छा, क्या बाबा को सुनाने से हमारा वो भूल माफ हो जाता है? आधी हो जाता है। अच्छा, और भाई क्या कहते हैं, माफ हो जाता, आधा माफ हो जाता है? भाई तो बोलते आधा होता ही नहीं है। माताएं क्या बोलती है, आधा होता है नहीं होता है? हाँ, तो बहुत सुंदर। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, देखिए, देखो आपका बच्चा कुछ गलती करता है, ठीक है ना, और वो सच सच आकर के आपको बता देता है ना, मम्मी मेरे से ये गलती हो गई, तो फिर क्या करेंगे? अच्छा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, है ना। और अगर उसने गलती की नहीं बताई, आपको तो पता चल गया, लेकिन वो फिर भी वो छिपा रहा है, तो क्या करेंगे आप? लगाएंगे दो तमाचा, गलती भी किया और झूठ भी बोल रहा है ना। तो अभी आप ऐसे सामने लाओ, हम खैर बाबा तो कुछ नहीं करता, हम अपने आप को ही तमाचा लगा लेते हैं, हम खुद ही, है ना, हमने गलती की और बाबा को नहीं बताया तो क्या होगा? आप सोचो, आपका योग लगेगा? लगेगा? अच्छा, दो चार लोग बोलते हैं नहीं लगेगा, और बाकी जिन्होंने नहीं बोला उनका क्या विचार है? लगेगा? आपने गलती की, बाबा को नहीं बताया तो योग लगेगा? नहीं लगेगा। दिल खाएगा, बार बार मन खाएगा, मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए था, हो गई, ठीक नहीं हुआ। हाँ, आपको याद होगा जो पुराने भाई बहन हैं, बाबा ने कई अव्यक्त मुरली में एक बात कही कि रात में सोने के पहले सारे दिन का समाचार बाबा को सुनाकर सोएंगे तो क्या होगा? हल्के हो जाएंगे और अमृत वेला अच्छा होगा, नींद अच्छी आएगी। एक बात जो सुनना चाह रहा हूं वो नहीं आया अभी तक, लेकिन तीन चार मुरली में बाबा ने ये शब्द कही थी। बाबा राय देंगे, कमजोरी खत्म हो जाएगी और हाँ, वो माताजी ने ठीक बोला। तो बाबा ने कहा आप धर्म राजपुरी के सजाओं से बच जाएंगे। एक मुरली में नहीं, दो तीन मुरली में बाबा ने यह शब्द कहा कि जो बच्चे रात में सोने के पहले सारे दिन का समाचार सुनाकर सोते हैं वो धर्म राजपुरी के सजाओं से बच जाएंगे। तो एक टीचर बहन ने गुलजार दादी से यह प्रश्न पूछा कि दादी ये तो बहुत सहज बात है, रोज हम बाबा को समाचार सुनाएं और इतनी सी बात करने में धर्म राजपुरी के सजाओं से बच जाना, ये तो बड़ी अच्छी बात है, दादी थोड़ा सा स्पष्टीकरण मैं चाहूंगा। तो दादी ने कहा बाबा को सुनाने का मतलब ये नहीं कि रोज ही गलती करते रहो और रोज हम बाबा को सुना देते बाबा आज हो गई, हम रोज गलती भी करते रहे और बाबा को सुना दिया और माफ हो गया। बाबा को सुनाने का मतलब है कि हम दिल से रियलाइज करें, मीठे बाबा ये गलती मेरे से नहीं होनी चाहिए थी, मेरे से हो गई, मैं आगे के लिए दृढ़ संकल्प करता हूं कि दोबारा मेरे से ये गलती नहीं होगी। और बाबा ने कहा जो आपने कर लिया वो तो फिर इतना हो गया, विकर्म खत्म नहीं होता बल्कि वो हल्का हो जाता है, आपका बता देंगे तो योग अच्छा लगेगा, बोझ उतर जाएगा, है ना, और बाबा से शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगी, और विकर्म तो योग बल से ही खत्म होगा। अच्छा, हमें कैसे पता चले कि हमारा विकर्म खत्म हो रहा है योग से? खुशी। अच्छा, बहुत सुंदर, हमारे जीवन से वो खुशी दिखाई पड़ेगी, हल्कापन, क्योंकि बोझ है ना, विकर्मों का बोझ खत्म हुआ तो हम हल्के हो जाएंगे, खुशी होगी। और आप देखेंगे आपके संकल्प बहुत शुद्ध होते जाएंगे, बहुत पॉजिटिव होते जाएंगे, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। अच्छा, तो भूल करके छिपाना नहीं है, अगर कोई छिपाता है तो छिपाते 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 खुद ही तो बाबा ने कहा कि देखिए, देखो जैसे कोई पेशेंट है और डॉक्टर के पास जाए और अपनी बीमारी बताए नहीं तो क्या होगा, ठीक हो जाएगी बीमारी? वो बीमारी बढ़ते 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 एक दिन ओम शांति। तो ऐसे ही अगर हमारे अंदर कोई पुराने स्वभाव संस्कार की बीमारी लगी हुई है और हम बाबा को बताते नहीं है, बड़ों के आगे स्पष्ट नहीं करते हैं, तो बीमारी बढ़ते 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 एक दिन ब्राह्मण परिवार से ही निकाल ले जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी बात छिपा के नहीं रखना है, बाबा को सच सच सुना देना है। अच्छा, और आगे बाबा ने क्या कहा? धीरज, अभी धीरज रखो, अभी पूरा नहीं हुआ प्रश्न उत्तर में। बाबा ने कहा और आगे ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी की निशानी क्या बताई? हाँ देखो, निराहंकारी बनना है और निर्विकारी बनना है। अच्छा, निराहंकारी बनेंगे तो निर्विकारी बन जाएंगे। आज बाबा ने क्या कहा देखो, कितनी प्रैक्टिकल बात, किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करना है, है ना। अब आप देख लीजिए हम कहां तक इस बात को पालन करते हैं। अभी हम किसी का देख लेते हैं तो फटाफट तुरंत हाँ वो पास कर देते हैं, किसी की कोई ऐसी बात हमने देखी तो हम देर नहीं करते हैं, सुना आज का ताजा समाचार उसने ऐसा किया, अगर उसने योग लगाया हो, कोई सेवा किया हो, तो वो जाकर हम नहीं सुनाएंगे कि उसने इतना आज योग कर लिया या ये सेवा कर ली, वो बात नहीं सुनाएंगे। आज बाबा ने ये कहा वो नहीं सुनाएंगे, लेकिन कोई कमी कमजोरी की बात होगी तो और सुनने वाला उसका भी हाँ कान खड़ा हो जाता, अच्छा ऐसा हुआ क्या तो ना सुनना है और ना, और कोई सुनाने आ जाए तो चाय पिला के भेज देना उसको। आपसे आपका सीनियर है और आपके पास आता है सुनाने तो क्या करेंगे? हाथ जोड़ लेना है। अच्छा हाँ ठीक है, एक बार हम लोगों की भट्टी थी, तो बड़ी दादी ने यही प्रश्न पूछा कि अगर आपके पास कोई आता है व्यर्थ सुनाने संसार समाचार, ताजा समाचार, हाँ, और आपसे सीनियर है, बड़ा है, आप उसको मना भी नहीं कर सकते हो, तो क्या करोगे? तो हमने यही कहा कि एक कान से सुन, दूसरे कान निकाल देना है। तो दादी ने कहा नहीं, और बताओ। तो और हम लोग और क्या हो सकता है, हाँ? तो दादी ने कहा देखो कितनी अच्छी बात बताई कि जिस कान से सुनते हो उसी से बाहर निकालो, अगर इससे बाहर निकालोगे तो यहां चिंतन चल जाएगा, दूसरे से बाहर नहीं, जिस कान से सुनो उसी से, है ना, सुनी अनसुनी। तो क्या होगा, उसको भी लगेगा ये हमारी बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है, चला जाएगा। और अगर आपने सुन लिया तो वो सोचेगा हाँ ये हमारे अच्छे ग्राहक है, जो भी हाँ, बाबा ने तो एक मुरली में कहा तुम उसके लिए क्या बन गए, कौन से डिब्बा, डस्टबिन का डिब्बा, जब भी उधर इधर का कूड़ा किचड़ा होगा लाकर के आपके ऊपर, क्योंकि आपने एक बार उसे सुन लिया है। और सुन तो सुनते तो हैं और हाँ में हाँ मिला करके उसको और रिस्पेक्ट देते हैं। हाँ जब भी आपके पास इकट्ठा होगा ना मैं तैयार हूँ, साफ डाल ज्यादा मेरे ऊपर। तो डस्टबिन का डिब्बा बनना है क्या बाबा, हमें क्या बनाने आए हैं, हीरा हम बन जाते हैं। अच्छा तो जब भी हमारे मुख से व्यर्थ बोल निकलता है, हम व्यर्थ बातें करते हैं, तो उस समय ये सोचो कि हमारे मुख से ये व्यर्थ बोल रूपी बोल धुआं बन करके वतन में बाबा के आंखों में लग रहा है और बाबा ऊपर से मना कर रहे हैं, बच्चे बस करो बस करो। हाँ तो क्या आपको नहीं आता कि मैं व्यर्थ बोल बोलता रहूं और बाबा के आंखों में लगता रहे। तो हमारे हर व्यर्थ बोल रूपी बोल धुआं बन करके बाबा के आंखों में लगता है, तो इससे क्या होगा, हमें ब्रेक लग जाएगा। जो बाबा हमारे लिए इतना करता है और हम व्यर्थ बोल करके उसके आंखों में लगाएं, नहीं। अच्छा तो बाबा ने कहा देखो जैसे हम अपना कोई हमारी निंदा गिलानी करे तो हमें अच्छा लगता है क्या, लगता है? तो जैसे हमें अच्छा नहीं लगता वैसे उसको भी अच्छा नहीं लगता है ना, जैसे हमें अपनी महिमा सुनना अच्छा लगता है वैसे उसको भी अपनी महिमा सुनना अच्छा लगता है। तो ना सुनना है ना सुनाना है। अब एक मिनट अपने आप को देखेंगे, आत्मा राजा बन करके भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर विराजमान होंगे और स्वयं को देखेंगे, मैं बहुत तेजोमय आत्मा, मुझसे चारों ओर तेज प्रकाश फैल रहा है, बहुत तेजस्वी आत्मा, मैं बहुत बहुत पवित्र, संपूर्ण पवित्र, पवित्रता का सूर्य हूं, शरीर लुप्त हो गया है, सूर्य के भांति दमक रहा हूं, आज से मुझे ना व्यर्थ बातें सुननी है और ना ही सुनानी है, मैं बहुत शुद्ध आत्मा, अनंत शक्तिवान, मास्टर सर्वशक्तिमान, बहुत बहुत शक्तिशाली आत्मा, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर आत्मा, ओम शांति। आ जाइए धारणासार पर। धारणासार में बाबा ने क्या कहा, ये तो बिल्कुल सन्नाटा सा आ गया, क्या बात है। क्या कहा बाबा ने, शिव शक्ति से ना, बाबा ने कहा शौक रखना है, किस बात का, हाँ सर्विस करने का शौक रखना है, और सर्विस करने का शौक होगा तो हाँ अपना भी कल्याण करेगा, दूसरे का भी कल्याण करेगा। आप देखिए, आपको सर्विस करने का शौक है तो आपकी निशानी क्या दिखाई पड़ेगी? जिसको सर्विस करने का शौक होगा उसकी क्या निशानी दिखाई पड़ेगी? उमंग उत्साह से भरपूर। बहाना निकालेगा वो, आज हमारा सिर दर्द है, पेट दर्द है, घर में मेहमान आ गए, ऐसा कहेगा क्या? नहीं कहेगा, सदा एवर रेडी रहेगा, है ना? क्योंकि शौक है ना, लगन है ना सेवा करने की। ऐसा नहीं कहेगा वो भी तो नहीं आया, मैं ही हूं क्या, और भी दूसरे आए कि नहीं आए? वो किसी दूसरे को देखेगा क्या? घड़ी देखेगा क्या? अभी तो टाइम हो गया हमारा है? जो टाइम कौन देखता है? टाइम कौन देखता है? काम चोर जो नौकर होता है ना वो टाइम देखता है, नौकरी वाला हा? हम तो बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा हमारी सर्विस करने आया है। बाबा ने जैसे हमें अज्ञान अंधकार से निकाला, आप सोचिए अगर बाबा हमें नहीं मिला होता तो हम कहां होते आज? संसार की करोड़ों आत्माओं में से भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ी, उसने हमें पसंद किया, हमें सिलेक्ट किया, हमारे ऊपर विश्वास रखा कि यही मेरे बच्चे सतयुगी दुनिया की स्थापना में मेरे मददगार बनेंगे, यही मेरे आशाओं के दीपक हैं। उसने हमारे ऊपर आशा रखा, हमारे ऊपर विश्वास रखा, और हम विश्वासघात करें और भगवान के साथ हा? बहुत बुलाने पर देखो, बड़े बड़े मठाधीश धर्मन महामंडलेश्वर, उनको नहीं मिला, हमें मिला, हमारी बुद्धि कहां खोला? आप सोचिए, मैं तो कई बार सोचता हूं, मैं अपनी बात बताऊं कि देखो दुनिया में कितनी संस्थाएं हैं, लेकिन उसमें का हेड कौन है? कोई ना कोई गुरु गोसाई पंडित आचार्य महामंडलेश्वर। और आपकी संस्था से जुड़े हैं हाँ? आपके संस्था का हेड कौन है? आप सोचिए तो सही, कितनी बड़ी प्राप्ति, और वो आपको क्या बना रहा है हाँ? दुनिया में मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते हाँ? आपको अगर आप किसी को कहें हम मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऊपर से नीचे तक पहले आपको देखेगा, क्या बोला हाँ? आप देवता, वो तो एक बार है ना चौंक जाएगा, इन्हने बोला क्या आप देवता बनोगे? वो तो है ना सोच भी नहीं कर सकते इस बात, कल्पना भी नहीं कर सकते। और हम रोज देवता बनने वाले, रोज सुन सुन करके हम कामन समझ लिया, तो इसका हमें चिंतन करना, सोचना है कितनी बड़ी बात है ये। और कोई इस कल्प की बात नहीं, लेकिन हर कल्प कल्प के लिए ड्रामा में नूद हो गया। ऐसे नहीं कि इस कल्प में आप देवता बनेंगे तो दूसरे कल्प में दूसरा कोई बन जाएगा, हर कल्प आपको ही बनना है हा? ड्रामा में नूद हो गया हर कल्प के लिए। तो बाबा का कितना एहसान है, कितना उसका थैंक्स करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? तो रोज हमें दिल से बाबा का थैंक्स करना है, बाबा है ना, दिल से करना है, बाबा आपने हमें सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया क्या नहीं दिया मैं तो है ना, सब कुछ तो दिया। बाबा ने कहा जब मैं तुम बच्चे को मिला, तुम बच्चों को जब मैं मिला, तो मैं केवल मैं ही नहीं मिला, लेकिन मैंने अपनी सारी शक्तियां, सारे वरदान, सारे खजाने, सारी सिद्धियां, सब कुछ दे दिया, और मैं खुद ही तुम्हारा हो गया, भगवान पर हमारा अधिकार हो गया। कितनी बड़ी प्राप्ति। तो इतना हमारे अंदर निश्चय हो, इतना उमंग उत्साह हो, तो योग टूटेगा क्या? तो रोज एक नियम बनाना, बा देखो हमें कोई जरा भी मदद करता है, सहयोग करता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? आपने हमें समय पर मदद किया है, सहयोग दिया है, हम आपका एहसान जीवन भर नहीं भूलेंगे। और बाबा ने क्या किया हाँ, ये लिस्ट निकालना आपके लिए होमवर्क है, बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया, नहीं तो एक मिनट आप लिस्ट निकाल ही लो, सोचो, अंदर में चिंतन करो। बाबा ने एक मुरली में कहा कि अंत में प्राप्तियां याद आएंगी, संगम युग की प्राप्तियां याद आएगी अंत में, तो उस समय बहुत पश्चाताप होगा कि संगम युग पर बाबा से तो हमें ये भी प्राप्ति थी, ये भी थी, ये भी थी, बहुत प्राप्तियां थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं, हमने तो लिया ही नहीं, हम तो ऐसे ही रह गए, हम तो एक दूसरे को देखते ही रह गए, हाय मेरा भाग्य। तो बाबा ने कहा अंत में पश्चाताप ना करना पड़े, उसके लिए अभी से सोच लो, अभी से रियलाइज कर लो बाबा से हमें क्या क्या मिला है और हमने क्या क्या लिया है। मिला तो बहुत कुछ है लेकिन हमने क्या क्या लिया है, हाँ ना? तो हाँ, तो प्राप्ति की लिस्ट निकालना, ठीक है ना, संगम युग की क्या क्या प्राप्तियां हैं उसकी लिस्ट निकालना, और लिस्ट निकालने के बाद फिर अपने आप से पूछना क्या मैंने ये लिया है। आज बाबा ने कहा ना, कथनी करनी क्या करनी है, एक। मैं सोच रहा था कि देखो बाबा ने कहा कथनी करनी एक कर, एक रखनी है, क्या सचमुच मैं जो कहता हूं वही करता भी हूं? दूसरों को तो खूब नशे से है ना, हम बोलते हैं ये करो, निंदा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना है, चोरी हम खूब सुना देते हैं, क्या मैं खुद करता हूं? अमृत बेला रोज उठना है, मुरली सुनना है, है ना, ये करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना है सो अभी करना है, कितना नशे से ज्ञान सुनाते हैं। क्या मैं भी यही बात अपने आप को सुनाता हूं कि अभी नहीं तो कभी नहीं? तो हम अपने आप से पूछें क्या सचमुच मेरा, वैसे तो आज दुनिया की आत्माएं, दुनिया की आत्माओं की नजर ब्रह्मा कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऊपर जाती है और वो कहते हैं कि सचमुच आप लोगों की कथनी और करनी एक है। मैंने तो यहां पर देखा बड़े बड़े मठाधीश महामंडलेश्वर भरे सभा में, महात्माओं की सभा में खुद महात्मा बोलते कि आप लोग जो कहते हैं वो प्रैक्टिकल जीवन में है, आप लोगों ने तो भगवान को पा लिया, हम तो ढूंढते रह गए लेकिन आप लोगों ने भगवान को पा लिया। ये कम बात नहीं है, महात्माओं की सभा में कोई महात्मा बोले, उनका बिल्कुल हम आपके पीछे पीछे हैं, हम आपके साथ साथ हैं, ऐसे भरी सभा। तो वो तो कहते हैं, अब लेकिन हम अपने आप से पूछे क्या सचमुच बाबा ने तो हमें इतना लायक बना दिया कि ऊंची दृष्टि से सारे लोग हमें देखने लगे, लेकिन मैं खुद अपने आप को उस ऊंची दृष्टि से देखता हूं, क्या सचमुच मेरी कथनी करनी एक है? हमें खुद की चेकिंग करनी है, ठीक है ना? तो अब हम 2 मिनट फिर से साइलेंस में बैठते हैं और अपने आप से पूछेंगे बाबा से हमें क्या क्या मिला है, आप सोचो, और क्या सचमुच मेरी कथनी करनी एक है, और फिर आप संकल्प करो क्या क्या मैं दूसरों को कहता हूं और क्या मैं उस पर करता हूं, उस पर मैं चलता हूं, आप चिंतन कीजिए 1 मिनट। ओम शांति। तो धारणा की दूसरी बात, बाबा ने कहा कि ईमानदार और निरहंकारी बन करके सेवा को आगे बढ़ाना है, ठीक है ना? सेवा तभी वृद्धि को पाती है जब हम निरहंकारी होते हैं, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर अभिमान नहीं रहता, जब हम ये कहते हैं कि मैं करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मैंपन आता है या किसी भी प्रकार का अभिमान आता है तो वहां रुकावट हो जाता है, वहां आपस में टकराव होता है। तो कौन कराता है, बाबा कराता है या मैं करता हूं? कराने वाला बाबा, करण कराउन हर बाबा, और हम क्या हैं? मैं निमित्त मात्र, केवल हाथ। मैं तो ये कहता हूं कराने वाला भी वही तो करने वाला भी वही है, हमारे अंदर तो इतनी भी शक्ति नहीं कि मैं कुछ कर भी सकूं, करा भी वही रहा है तो कर भी वही रहा है, आप लोगों का प्रैक्टिकल अनुभव होगा। तो तो जब अंदर में निमित्त भाव रहता है, निर्माण भाव होता है, निर्मल वाणी होती है, तो सेवा ऑटोमेटिक वृद्धि को पाती है। मुझे याद आ रहा है दादी जी, क्योंकि दादी जी का मास चल रहा है, तो दादी जी की वो बातें अंतिम समय में, खास करके वो शांति स्तंभ पर, वो सभी मधुबन निवासी, ज्ञान सरोवर, नीचे से भी शांति वन से सब लोग इकट्ठा होते, और वो दादी पूछती, अच्छा ये बताओ अभी बाबा की सेवाएं कहां तक हुई है। दादी ने कहा, मेरी ये इच्छा है कि भारत में कोई एक भी गांव बाकी ना रहे और विदेश में एक देश भी बाकी ना रहे। है कोई ऐसा जो पान का वीड़ा उठाए और ये कहे कि दादी हाँ ये सेवा मैं करके दिखाऊंगा? तो दादी के साथ में मोहिनी दीदी रहती थी, तो मोहिनी दीदी कहती, दादी ऐसा है एक हेलीकॉप्टर खरीद दो, कोई बड़ी बात नहीं, हम पूरी सेवा करके आ जाएंगे। तो दादी कहती, अच्छा हेलीकॉप्टर कितने में आता है? कितने में आता है? लेकिन आप सेवा के लिए तैयार रहो, जो चाहिए सो मिल जाएगा। आप देखिए दादियों का कितना उमंग उत्साह कि सेवा करो, जो चाहिए सो मिलेगा। तो निरहंकारी बनकर के हम सेवा करते रहें, तभी सेवा वृद्धि को पाती है। फिर बाबा ने कहा, अमृत वेले उठ करके क्या करना है? प्यार से याद करना है। याद में तो हम बैठते हैं, अगर हम प्यार से याद करेंगे तो हमारी दृष्टि घड़ी की तरफ जाएगी क्या? नहीं जाएगी। और जितनी जल्दी उठ जाएंगे उतने, क्योंकि प्यार है ना याद में, जो प्यार होता है वहां नींद नहीं आती। प्यार होता है तो घड़ी तरफ नजर नहीं जाएगी, प्यार हो तो हम दूसरे को नहीं देखेंगे। तो प्यार से याद करना माना उसकी लगन में मगन हो जाना। लेकिन प्यार तो बड़ी दूरी रही, हम तो ये कहते हैं अमृत बेला नींद ही नहीं खुलती है, कई कहते हैं हम गुड मॉर्निंग करके फिर सो जाते हैं, कई कहते हैं हम तो उठना चाहते हैं लेकिन नींद आती है, उठ ही नहीं पाते हैं। अच्छा, इन सारे प्रकार की समस्याओं का समाधान बाबा ने एक मुरली में बताया है, 16-11-95, वो अव्यक्त मुरली आप पढ़ लेना, उसके विस्तार में मैं नहीं जा रहा हूं। 16-11-95 की अव्यक्त मुरली है। अगर किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है तो बाबा ने उसमें एक उत्तर दिया, एक शब्दों में वो बता दूं। बाबा ने कहा, रात में जब कमरे में सोने जाते हो तो सोने के समय संसार की समाचार, इधर उधर बातों की लेन देन करके नहीं सोना। खास बाबा ने इस पर अंडरलाइन कराई, जब रात में सोने जाते हो ना बिस्तर पर, तो संसार की समाचार की लेन देन नहीं करना, बाबा को याद करके गुड नाइट करके ही सोना। और बाबा ने बहुत सारी बातें बताई कि बाबा ने कहा, कभी सुदर्शन चक्र फिराते फिराते सो जाओ, कभी बाबा कहते लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते देखते सो जाओ कि वाह मेरा भाग बाबा हमेशा। कई बार बाबा कहते हैं कि आधा घंटा याद में बैठो फिर सो। भिन्न भिन्न युक्तियां समय प्रति समय मुरली में हम सुनते रहते हैं। तो प्यार से याद करना है ना, ये भी एक यहां से संकल्प करके जाना। तो जब हम योग भट्टी में होते हैं तो हमारे अंदर वो शक्ति आती है, वो ताकत आ जाती है कि जो संकल्प हम करते हैं वो हमारा पूरा हो जाता है। क्योंकि जब हम योग भट्टी करते हैं तो बाबा की दृष्टि हमारे ऊपर रहती है, हमारे संकल्पों में बहुत पावर आ जाती है। ऐसे समय पर आप जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। साकार ब्रह्मा बाबा के समय जब योग भट्टी होती थी तो जब बच्चे जाते थे योग करके तो उनसे पूछा जाता था, बच्चों से, यहां से क्या लेके जा रहे हो और क्या छोड़ के जा रहे हो। ठीक है ना? तो आप भी, आपका भी जब जाएंगे तो लास्ट दिन अपना अनुभव सुनाना कि यहां से हम लेके क्या जा रहे हैं और क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो लेना क्या है और छोड़ना क्या है? बाबा ने कहा हमें क्या चाहिए आपसे, आप आपको जो दुख देता है, जो कष्ट देता है, जो चीज आपको परेशान करती है, जो अवगुण है, बुराई है, कमी कमजोरी, वो सब मुझे दे दो और मेरे से सारी अच्छाइयां, सारे वरदान, सारे खजाने, सारी शक्तियां मेरे से ले लो। ठीक है ना, पसंद है ना? इसमें भी चुपचाप बैठे हैं ये भी। अरे ये बाबा सारे खजाने आपको दे रहा है, सारी सद्गुण, सारी अच्छाइयां और सारी कमियां आपसे ले रहा है। ठीक है ना? हाँ जी या ना? हाँ, तो बस यही तो करना है। अच्छा, वरदान क्या था? वरदान आज का त्रिमूर्ति सर्टिफिकेट द्वारा क्या प्राप्त करने वाले? हाँ, क्या प्राप्त करने वाले? फिर उसके आगे ऊंच पद था, सफलता प्राप्त करने वाले ऊंच पद के अधिकारी भव। तो कौन से तीन सर्टिफिकेट? स्वयं की संतुष्टता, बाप से संतुष्टता और परिवार। स्वयं की संतुष्टता के लिए बाबा ने क्या बताया? श्रीमत मर्यादा की लकीर के अंदर रहना। अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक बाबा ने हर कर्म की श्रीमत बताई है। 31 दिसंबर 1970 आप ये अव्यक्त मुरली पढ़ लीजिएगा। आंख खुलने से लेकर रात्रि सोने तक अगर आपने उस अव्यक्त मुरली के अनुसार दिनचर्या बना ली, तो जो कहते हमारा योग नहीं लगता, उनकी शिकायत हमेशा हमेशा के लिए खत्म। 31 दिसंबर 1970, हर कर्म की आंख खुलने से, आंख खुले तो संकल्प हमारा क्या हो, पहला संकल्प क्या हो, फिर रात्रि सोने तक हर कर्म की बाबा ने श्रीमत मर्यादा बहुत विधि पूर्वक। आप अपना उस अनुसार दिनचर्या बना ले, फिर देखें आपके जीवन में कितनी खुशी आती है, कितनी आत्मसंतुष्टता आती है, कितनी भरपूरता का अनुभव होता है। फिर दूसरा सर्टिफिकेट बाप से, बाप से सर्टिफिकेट लेना माना क्या? रहना बाबा से सच्चे रहना। और सच्चे बच्चों को बाबा क्या कहते हैं? जो सच्चे हैं, सच्चे दिल पर, और जिस पर साहेब राजी है उसको क्या करेगा? कहते ना बाबा ने कहा ना, सच्चे दिल पर साहेब राजी, और साहेब राजी तो क्या करेगा धर्मराज काजी, या भगवान ही आपके ऊपर राजी हो गया। तो बाबा ने, बाबा को सच्चाई बहुत पसंद है क्योंकि वो परम सत्य है ना। तो जहां सत्य है वहीं परम सत्य बाप है। सत्य के लिए क्या? सत्य की नैया हिलती है, डुलती है, लेकिन डूब नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं डूब सकती? क्योंकि खिवैया स्वयं भगवान है। तो सत्यता, इसलिए बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा, जो मेरे सच्चे दिल वाले बच्चे हैं, अंत में जब पानी पीने योग्य नहीं होगा, ये बाबा के महावाक्य आपको सुना रहा हूं, जब पानी पीने योग्य नहीं होगा, भोजन करने योग्य नहीं होगा, ऐसे समय पर मैं सच्ची दिल वाले बच्चों के लिए बंधा हुआ हूं, अंत तक उन्हें दाल रोटी खिलाता रहूंगा। भगवान बंध गया आपको दाल, लेकिन अंदर में सच्चाई, सफाई और श्रीमत पर सदा चलते रहें। तीसरी बात परिवार से। परिवार से सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिगार्ड देना। रिगार्ड का रिकार्ड निरंतर चलता रहे। सबको दिल से सम्मान दो। बाबा ने कहा एक अव्यक्त मुरली में, बाबा ने कहा यदि सर्व गुण संपन्न बनना है तो दिल से हरेक को सम्मान दो। फिर बाबा ने आगे कहा, लेकिन मेरे बच्चे क्या करते हैं, सम्मान देने में बिजनेसमैन बन जाते हैं। वो दे तो मैं दूं, उसने नहीं दिया तो मैं क्यों दूं, है ना। लेकिन बाबा के महावाक्य भूल जाते हैं कि वास्तव में सम्मान देना ही सम्मान लेना है। अब इसी सम्मान के ऊपर मुझे एक दादी की बहुत सुंदर प्रसंग याद आ गई। टाइम तो हो गया है लेकिन मैं बता देता हूं दो मिनट में। एक बार एक कोई वीआईपी बड़ी दादी से मिलने आया कोई, और गेट पर जो सिक्योरिटी वाला भाई था उसने रोका, परिचय पूछा आप कौन है। तो वीआईपी जो था, अरे मैं इतना बड़ा वीआईपी और तुम एक साधारण सा यहाँ पर पहरेदार और मेरे से परिचय पूछ रहा है, मैं यहाँ की चीफ से मिलने आया हूँ। तो सिक्योरिटी वाला भाई बोला, भाई देखिए मेरी ड्यूटी है यहाँ पर, मैं बिना किसी का परिचय पूछे अंदर है, मैं अपनी ड्यूटी बजा रहा हूँ ना, हमारी ड्यूटी है ना, मुझे कहा गया है। तो वो ऊंची ऊंची आवाज में बोलने लगा कि नहीं मुझे परिचय नहीं देना, मुझे अपने चीफ से मिलाओ ऐसे। और दादी जी आंगन में टहल रही थी, जब दादी ने ऊंची ऊंची आवाज सुनी तो दादी के साथ में आशा बहन थी, दिल्ली वारसी वाली आशा बहन। तो दादी कहती है, आशा ये क्या आवाज गेट पर हो रहा है, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। दादी आई तो दादी ने देखा और दादी समझ गई कि ये पहरे वाला भाई रोक रहा है और वो जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश कर रहा है, दादी समझ गई। तो दादी ने उस वीआईपी भाई को बोला, कहा बड़े प्यार से दादी ने कहा, भाई इस सिक्योरिटी वाले भाई से यदि कुछ गलती हो गई हो बोलने में तो इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूं। तो आशा बहन ने कहा उस भाई को, वीआईपी भाई को आशा बहन ने कहा, आप यहां पर किससे मिलने आए हैं। तो कहा मैं यहां की चीफ से मिलने आया हूं। तो कहा आपको पता है यहाँ की चीफ कौन है, यहाँ की चीफ आपके सामने खड़ी हुई है दादी प्रकाश मनी जी। उसके तो पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गया और वो तुरंत ही दादी के चरणों में गिर पड़ा, दादी जी मुझे माफ कीजिए, मैं अगर ऊंची ऊंची आवाज में यहां बोला हो। देखो दादी का एक शब्द उसको कहां झुका दिया, चरणों में झुका दिया। तो देखिए सम्मान, तो सम्मान देना नहीं लेकिन वास्तव में सम्मान लेना है। कल भी बाबा ने कहा था ना कि आप किसी को सीट देते हो तो वो है ना खुद आ नहीं बैठो बैठो, और अगर नहीं देते हो तो वो खुद आपको उतार करके बैठ जाएगा। तो वास्तव में सम्मान लेना ये याद रखें। तो ब्राह्मण परिवार में हम, ब्राह्मण परिवार में एक दूसरे को दिल से सम्मान देना, स्नेह देना, सहयोग देना और अपने जीवन से ज्ञान देना, ठीक है। स्लोगन, आज का स्लोगन क्या था, चित्र को ना देख क्या देखना है, चैतन्य और चरित्र को देखना है। और चैतन्य और चरित्र को देखेंगे तो क्या बन जाएंगे, चरित्रवान बन जाएंगे। हाँ कितनी अच्छी बात, चरित्रवान बनने के लिए आप चैतन्य आत्मा को देखो, है ना, उसके चरित्र को देखो, चित्र को ना देखो, शरीर को ना देखो। शरीर देखने से ही हमारा चरित्र का पतन हुआ है, और जब हम अशरीरी आत्मा को देखते हैं तो हम चरित्रवान बन जाते हैं, हमारे अंदर सारे। बाबा ने कहा कि कई बार हम कहते हैं ना क्या पुरुषार्थ करें, तो बाबा ने कहा एक पुरुषार्थ करो जीवन में, उसमें सारा पुरुषार्थ समाया है, और वो है हरेक को आत्मा देखना। आपको अलग अलग कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये आदि का भी यही पाठ है तो अंत का यही पाठ है, और इसी पाठ से हम चरित्रवान बन जाते हैं, महान बन जाते हैं, हमारे जीवन में सारे दैवी गुण आ जाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि अभी आप जो रोज मुरली सुनेंगे वो अपने जीवन से अनेकों को बाबा का परिचय देने के निमित्त बनेंगे। बाबा यही चाहते हैं कि आप अपना जीवन ऐसा बनाओ कि आपको देख करके औरों को प्रेरणा मिले कि हाँ इनके तरह मुझे भी बनना है, जीवन हो तो ऐसा। इन्हीं सद्भावना के साथ थैंक यू, ओम शांति।